अपने कमरे में बैठी अरुणिमा किसी पत्थर की तरह जड़ हो गई थी। आस्तिक के कमरे से गए हुए 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन अरुणिमा अब भी वहीं बैठी हुई थी। आस्तिक के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। आज रात खुद को अच्छे से तैयार करना, ताकि तुम्हें देखकर मेरा थोड़ा मन हो तुम्हारे पास आने का। वैसे तो तुम खुद को कितनी भी अच्छी तरह से रेडी कर लो, मैं तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करूंगा। पर क्योंकि अगले 1 साल में मुझे तुमसे बच्चा चाहिए, इसीलिए ना चाहते हुए मुझे तुम्हारे करीब आना होगा। सो माई डियर वाइफ, बी रेडी टू नाइट। अरुणिमा के कानों में बस यही शब्द गूंज रहे थे, आज रात के लिए तैयार रहना, आज रात। आस्तिक के शब्द उसे झकझोर रहे थे। उसके पास आने का मतलब, अरुणिमा का मन घबराने लगा। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया और डरते हुए इन आवाज़ों को सुनना बंद करना चाहा। लेकिन जितना वो अपने कान बंद करती, ये आवाज़ें उतनी ही तेज उसके दिमाग में घूमने लगती। काफ़ी देर तक सहन करने के बाद अरुणिमा से और बर्दाश्त नहीं हुआ। धीरे धीरे वो खड़ी हुई और आईने के पास चली गई। आईने में उसने अपना टूटा हुआ अस्तित्व देखा, बिखरे हुए बाल, उजड़ा हुआ चेहरा। उसके पास बचा ही क्या था, एक बड़े घर की बेटी, एक बड़े घर की बहू, एक राइस बिजनेसमैन की बीवी, लेकिन उसकी हैसियत एक नौकरानी से भी बदतर। अरुणिमा के होंठ कांपने लगे, वो डरते हुए आईने में खुद को देखने लगी। उसकी नज़र अपने खुले हुए पेट पर गई। नाभि के पास हाथ रखते हुए उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो डरते हुए खुद से सवाल करने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं शैतान के बच्चे को इस दुनिया में कभी नहीं लाने दूंगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं शैतान के साथ सारी जिंदगी के लिए बंध जाऊंगी। ऐसा हुआ तो मेरी और मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मैं शैतान से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अरुणिमा ये सब सोचते हुए जल्दी से कैलेंडर के पास गई और वहां कुछ देखने लगी। जैसे ही उसकी नजर कैलेंडर पर पड़ी, उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मेरे पीरियड्स तो अभी खत्म हुए हैं, इसका मतलब, वो बुरी तरह डर गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना होगा, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकती हूं? अरुणिमा घबराते हुए इधर उधर देखने लगी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके हाथ पेट की तरफ कांप रहे थे, लेकिन उसके अंदर से एक जवाब आ चुका था, मुझे भागना होगा, मुझे यहां से भागना होगा, मुझे शैतान से दूर भागना होगा। अरुणिमा अलमारी के पास गई और घर के कपड़े पहन लिए। उसने खुद को ठंडे पानी से फ्रेश किया, चेहरा साफ किया और बालों का एक मैसी सा बन बनाकर उसे एक लेटर से बांध लिया। वो कोने में बैठ गई और अपने किए गए निर्णय के बारे में सोचने लगी। उसने सोच लिया था कि वो भाग जाएगी, इन सब से दूर, इस धोखे की दुनिया से दूर, इन लोगों से दूर और आस्तिक से इतनी दूर कि वो जिंदगी में कभी उसे ढूंढ ना सके। पहले भले ही मुझे छोटी छोटी नौकरियां करनी पड़े, नौकरी ना भी मिली तो घरों में काम करके अपनी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन कम से कम वो जिंदगी इस जिंदगी से बेहतर होगी। लेकिन समस्या ये थी कि अरुणिमा यहां से भागेगी कैसे? घर के हर तरफ सिक्योरिटी थी, अरुणिमा को दरवाजे से बाहर कदम रखने की भी इजाजत नहीं थी। पिछले 1 साल से वो इस घर में कैद थी। गार्डन एरिया में 120 CCTV कैमरे थे, तो पूरे बंगले का तो पूछो ही मत। अगर कभी अरुणिमा को बाहर जाना होता तो या तो आस्तिक उसे खुद साथ ले जाता या फिर उसके साथ हाईटेक सिक्योरिटी की एक पूरी टीम जाती। ऐसे हालात में अरुणिमा का यहां से भागना लगभग नामुमकिन था। उसे बिना किसी की नजर में आए यहां से निकलना था। यही सोचते सोचते अरुणिमा के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंक गई। हैरानी और डर के साथ उसने दरवाजे की तरफ देखा। इस वक्त कौन हो सकता है? क्या आस्तिक वापस आ गया है? लेकिन वो तो कहकर गया था कि रात को आएगा, फिर इतनी जल्दी कैसे? अरुणिमा घबराते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगी। वो सब सोच ही रही थी कि दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। मैम, डॉक्टर निशा आपसे मिलने आई हैं। बाहर से रोजी की आवाज सुनकर अरुणिमा को थोड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि ये आस्तिक नहीं था, लेकिन डॉक्टर निशा उससे मिलने आई हैं। डॉक्टर निशा अरुणिमा की पर्सनल डॉक्टर थी, जिन्हें रायचंद फैमिली ने ही अरुणिमा के लिए प्रोवाइड करवाया था, ताकि जब भी अरुणिमा को डॉक्टर की जरूरत हो तो डॉक्टर निशा ही उसका चेकअप करें। इस 1 साल में डॉक्टर निशा सिर्फ 2 बार अरुणिमा के चेकअप के लिए आई थी, वे भी सबकी निगरानी में। एक बार जब अरुणिमा के पैर में मोच आ गई थी और दूसरी बार जब किचन में काम करते वक्त उसके हाथ में चोट लग गई थी। बस इसके अलावा डॉक्टर निशा कभी उसे मिलने नहीं आई। लेकिन आज अचानक डॉक्टर निशा यहाँ क्यों आ गई, वो भी तब जब अरुणिमा बीमार नहीं है? अरुणिमा हैरानी से ये सब सोच ही रही थी कि रोजी ने एक बार फिर से दरवाजा खटखटाया। अरुणिमा जल्दी से खड़ी हो गई और अपने दुपट्टे को कसकर संभालते हुए बोली, ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। जैसे ही अरुणिमा ने यह कहा, रोजी ओके बोलकर वहां से चली गई। अरुणिमा ने एक नजर आईने में खुद को देखा। मैं ठीक तो लग रही हूं ना?
तभी दरवाजा खुला। अरुणिमा ने देखा दरवाजा नीरज ने खोला था। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और उसके पीछे डॉक्टर निशा खड़ी थी। उनके हाथों में स्टेथोस्कोप और आंखों पर हमेशा की तरह चश्मा था। वे मुस्कुराते हुए अंदर आईं। अरुणिमा ने भी जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। डॉक्टर निशा ने अरुणिमा को देखकर कहा, हेलो अरुणिमा, कैसी हो तुम? अरुणिमा बोली, हेलो डॉक्टर निशा, मैं ठीक हूँ, पर आप अचानक यहाँ कैसे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत भी खराब नहीं है, अरुणिमा ने हैरानी से डॉक्टर को देखते हुए कहा। तभी नीरज टेबल पर डॉक्टर निशा का बैग रखकर वहां से चला गया। डॉक्टर निशा ने अरुणिमा की ओर देखकर कहा, अरुणिमा मैं यहाँ तुम्हारा टेस्ट करने आई हूँ। टेस्ट? कैसा टेस्ट? अरुणिमा ने हैरानी से पूछा। डॉक्टर निशा ने स्टेथोस्कोप टेबल पर रखा और अपना बैग खोलते हुए बोली, मुझे तुम्हारे हस्बैंड ने भेजा है, वो तुम्हारा टेस्ट करवाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई है वो मैंने भी देखी है। डॉक्टर निशा की बातों ने अरुणिमा को शर्मिंदा कर दिया। वो समझ चुकी थी कि डॉक्टर निशा क्या कहना चाह रही थी। आस्तिक ने उन्हें यहाँ भेजा था ताकि वे अरुणिमा का चेकअप कर सके। हालांकि डॉक्टर निशा एक प्रोफेशनल थी, इसीलिए उन्होंने अपने शब्दों को तोल मोल कर इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी अरुणिमा महसूस कर रही थी कि कल रात की वजह से आस्तिक उसका टेस्ट करवाना चाह रहा था। ये बात अरुणिमा के लिए बेहद अपमानजनक थी। डॉक्टर निशा ने सिरिंज निकाली और अरुणिमा का ब्लड सैंपल लेने के लिए उसका हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अरुणिमा ने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मेरे साथ भी कुछ नहीं हुआ है। अपमान, घृणा और तिरस्कार की भावना से भरी अरुणिमा सब कुछ सहन कर रही थी, लेकिन अपने आत्मसम्मान को जिंदा रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। डॉक्टर निशा उसकी मनोदशा समझ सकती थी। उन्होंने सिरिंज को संभालते हुए कहा, मुझे पता है अरुणिमा कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। मिस्टर रायचंद चाहते हैं कि मैं तुम्हारा टेस्ट करूं। तुम फिक्र मत करो, मैं बस तुम्हारा ब्लड सैंपल लेने आई हूं। बाकी के टेस्ट हॉस्पिटल में होंगे, वहां तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट भी मिल जाएगी। ब्लड सैंपल से हमें ये पता चल जाएगा कि तुम्हें किस तरह का नशा दिया गया था। डॉक्टर निशा के शब्दों ने अरुणिमा के दिल में हजारों सवाल और चुभन पैदा कर दी। वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। हालांकि वो खून के आंसू रोना चाहती थी, लेकिन उसने अपने जज्बातों पर काबू पाया। इन सबसे ये बात साफ हो गई थी कि आस्तिक को अरुणिमा पर शक है और उसके पवित्र होने पर भी। लेखक की बात, टेस्ट की जरूरत तो आस्तिक को है, लेकिन उसके शरीर की नहीं, बल्कि उसके दिमाग की। खुद तो अमायरा के साथ इश्क फरमाता है और अरुणिमा से उसके पवित्र होने का सबूत मांग रहा है।
फिलहाल मैं अपने जज्बातों पर काबू रख रही हूँ, लेकिन आस्तिक जितना अरुणिमा को टॉर्चर कर रहा है, लेखक होने के नाते मैं हर बात नोट कर रही हूँ और आने वाले एपिसोड्स में इसका पूरा हिसाब लिया जाएगा। चलिए अब कहानी पर वापस आते हैं। अरुणिमा के कमरे में डॉक्टर निशा उसका ब्लड सैंपल ले रही थी। हालांकि अरुणिमा को इंजेक्शन के अंदर अपने खून के लाल रंग से ज्यादा तकलीफ इस बात की हो रही थी कि उसने जीवन साथी के रूप में एक ऐसे इंसान को चुना जो शायद इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। शादी के वक्त उसने इस इंसान के साथ सारी जिंदगी निभाने की कसम खाई थी। अरुणिमा को पता ही नहीं चला कि डॉक्टर निशा ने कब उसका ब्लड सैंपल ले लिया। नीरज को कोई कॉल आ गया था, जिसे अटेंड करने के लिए वो कमरे से बाहर चला गया। डॉक्टर निशा ब्लड सैंपल को कलेक्ट करके बैग में रख रही थी। अरुणिमा ने डॉक्टर निशा को देखते हुए कहा, डॉक्टर मुझे सच में कल रात का कुछ भी याद नहीं है, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, किसी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। अगर किया होता तो मुझे पता चलता, मेरी बॉडी पर कुछ तो रिएक्ट होता। मुझे फंसाया गया है, कोई अपने षड्यंत्र में मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मेरा इस्तेमाल कर रहा है। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? डॉक्टर निशा मुस्कुराते हुए सिर हिलाती हैं और कहती हैं, हाँ अरुणिमा मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कह रही हो। इनफैक्ट तुम्हारे चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता है कि तुम उस वक्त नशे में थी। जहाँ तक तुम्हें फंसाने की बात है, उसके लिए मिस्टर रायचंद है ना, तुम्हें पता है सोशल मीडिया से वो सारी क्लिप्स डिलीट करवा रहे हैं। जिसने भी तुम्हारे खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश की है उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। बाकी सब चीज़ें तुम अपने हस्बैंड पर छोड़ दो, और ये बस एक नॉर्मल टेस्ट ही तो है। जब तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है तो टेस्ट में कुछ भी नहीं निकलेगा। देखो अरुणिमा, आस्तिक एक मर्द है, किसी और के लिए ना सही तो अपने हस्बैंड के लिए ही सही। उसे सेटिस्फाई करने के लिए तुम ये टेस्ट करवा लो। अस्पताल में तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा एक घंटा। अरुणिमा कुछ और कहना चाहती थी, अपनी सफाई देना चाहती थी, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने अपने हाथ वहीं रोक लिए। वो अपने हाथ पीछे करती है और डॉक्टर निशा को देखकर कहती है, आपके हॉस्पिटल में मेरे बाकी टेस्ट होंगे, इसके लिए मुझे हॉस्पिटल आना होगा ना? डॉक्टर निशा मुस्कुराते हुए सिर हिलाती हैं। अरुणिमा अपने दिमाग में कुछ सोचती है और कहती है, ठीक है डॉक्टर, मैं शाम को आपके हॉस्पिटल आ जाऊंगी। निशा अपनी जगह पर खड़ी हो जाती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, यो हुई ना समझदारी की बात, चलो शाम को अस्पताल में मिलते हैं, मैं तुम्हारा टेस्ट भी कर लूंगी और इस ब्लड सैंपल की रिपोर्ट भी तुम्हें हॉस्पिटल में ही मिल जाएगी। डॉक्टर निशा कमरे से चली गई। दरवाजे पर ही नीरज मिल गया था।
उसने डॉक्टर निशा के हाथ से उनका बैग ले लिया और एक नज़र अरुणिमा को देखकर डॉक्टर निशा को वहां से ले गया। उनके जाने के बाद अरुणिमा ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और उसके चेहरे पर सुकून उतर आया। उसने सोचा डॉक्टर निशा के क्लिनिक में जाकर वो मौका तलाशेगी और जैसे ही मौका मिलेगा वो वहां से भाग जाएगी। इस सोच के साथ ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे ये सोचकर खुशी हो रही थी कि वो आस्तिक से आज़ाद हो जाएगी। भले ही ये खतरनाक हो सकता है लेकिन अपनी आज़ादी के लिए उसे ये खदशा भी मंजूर है। इसके बदले अगर उसकी जान भी चली जाए तो उसे अफसोस नहीं होगा, लेकिन वो उस शैतान के बच्चे को जन्म नहीं देने वाली। शाम को जब अरुणिमा अस्पताल जाने के लिए घर से बाहर निकली तो वो हैरान रह गई। नीरज और एक ड्राइवर के अलावा 10 से ज्यादा बॉडीगार्ड्स उसकी सुरक्षा के लिए वहां मौजूद थे। इतने सारे बॉडीगार्ड्स को देखकर अरुणिमा घबरा गई। उसने तो सोचा था कि नीरज और एक बॉडीगार्ड के साथ जाएगी और उन दोनों को चकमा देकर जल्दी से निकल जाएगी, लेकिन इतने सारे बॉडीगार्ड्स के बीच से निकलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अरुणिमा हार मानने वालों में से नहीं थी, कम से कम अपनी आज़ादी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। उसने गहरी सांस छोड़ी और मुस्कुराते हुए गाड़ी में जाकर बैठ गई, जैसे ये सब कुछ सामान्य हो। वो किसी को ये जताना नहीं चाहती थी कि इस वक्त वो कुछ सोच रही है, इसलिए उसने अपना चेहरा सामान्य बनाए रखा। जैसे जैसे गाड़ी अस्पताल की तरफ बढ़ रही थी, अरुणिमा की योजना और ज़्यादा मजबूत हो रही थी। अस्पताल पहुँचने के साथ ही बॉडीगार्ड्स ने अरुणिमा को ऐसे घेर लिया कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इतनी हाई सिक्योरिटी के बीच अरुणिमा डॉक्टर निशा के केबिन में पहुंची। वहां जाकर वो घबरा गई, क्योंकि उसकी भागने की योजना तो अस्पताल के दरवाजे पर कदम रखते ही खत्म हो गई थी। उसने सोचा था कि नीरज को और सिक्योरिटी को चकमा देकर वो अस्पताल की पार्किंग से ही भाग जाएगी, लेकिन यहाँ तो सिक्योरिटी उसे डॉक्टर निशा के केबिन तक लेकर आई थी। अब यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन अरुणिमा ने फिर भी हार नहीं मानी। डॉक्टर निशा के केबिन में आते ही निशा मुस्कुराते हुए बोली, तुम आ गई अरुणिमा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चलो मैं तुम्हारा टेस्ट शुरू करती हूँ। अरुणिमा जल्दी से डॉक्टर निशा के पास आई और उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, डॉक्टर प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज यहाँ से बाहर निकलने में मेरी मदद कीजिए। मैं सारी जिंदगी आपकी एहसानमंद रहूंगी, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए।